کثیر سورۃ المائدہ چھٹے پارے کا آغاز ہے، اور چھٹے پارے میں سورۃ النساء مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ آج ہم سورۃ المائدہ جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ، اس کے لفظی معنی ہے دسترخوان کے۔ قرآن کی سورت نمبر ترتیب کے اعتبار سے 5 ہے، اس کے اندر 16 رکوع، آیات 120، الفاظ اور کلمات کی تعداد 2842، جبکہ حروف 13,464 13,464 لیٹرز ہیں۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، تاہم اس کی چند آیات مکہ میں نازل ہوئیں۔ قرآن مجید کے تفصیلی احکامات کی یہ آخری سورت ہے۔ اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے، ایک تو ہے المائدہ اور دوسرا اس کا نام ہے سورت عقوت، عین قاف و دال۔ سورت نساء میں باہمی معاملات اور حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے، شوہر اور بیوی کے حقوق، یتیموں، والدین اور رشتہ داروں کے حقوق کی تفصیل آپ نے سورت النساء میں پڑھی۔ سورت المائدہ میں آپ پہلی آیت میں معاملات اور جو معاہدات ہیں ان کی پابندی پڑھیں گی، کیونکہ ان کو جو وعدے ہیں، جو ایگریمنٹ ہیں، جو معاملات ہیں، انہیں پورا کرنے کی اللہ رب العزت نے ہدایت کی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اور ایک فرمان لکھ کر ان کے حوالے کیا، تو اس میں آپ نے یہ جو آیت تھی اسے تحریر کیا تھا، جو سورۃ المائدہ کی پہلی آیت ہے۔ یہ پوری سورت جو ہے وہ ایک ہی خطبے پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، عقود کو وفا کرو، بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کا قرآنی نام جو ہے وہ ایمان لانے والا ہے۔ ایمان لانے والے کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں جو ہوں میرا شمار ایمان لانے والوں میں سے ہے؟ تو ایمان لانے والوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اوفو وفا کرو۔ وفا کرنا، اس کے معنی ہوتے ہیں پورا کرنا۔ وفا کرو بالعقود، عقود کو۔ عقود کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ہے عین قاف دال، اس کے لفظی معنی ہے گرا باندھنا، جیسے عقدۃ النکاح، نکاح کی گرا، یا پھر عقد البیع، جیسے تجارت کے لیے کوئی ایگریمنٹ ہو۔ تو گرا باندھنا جیسے کسی کو بند کرنا، بندش۔ تو یہ لفظ عہد، وعدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ وعدہ دو انسانوں، دو جماعتوں، دو ممالک کے درمیان ہو سکتا ہے۔ تو کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو عہد ہیں، جو اقرار ہے، جو ایگریمنٹ ہیں، جو وعدے ہیں، ان کو پورا کرو۔ ہر طرح کا جو پختہ عہد ہے، کانٹریکٹ ہے، اس کے لیے عقود کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو عہد ہے یہ اللہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور بندے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کے معنی کیا ہیں، کہ اللہ کے جو حقوق ہیں، हुकूकुल्लाह और दूसरी तरफ हकूकुल इबाद जो के बंदों के हकूक हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ए लोगों जो ईमान लाए हो उकूद को पूरा करो। मानी ये है कि अहकाम इलाही जो अल्लाह ने इंसानों पर फर्ज करार दिए हैं, इंसानों पर लाजिम करार दिए हैं, इंसान मुसलमानों को चाहिए कि उन्हें पूरा करें। और दूसरी तरफ जो हुकूकुल इबाद है, आपने पीछे सूरत निसा में भी पढ़ा, वालदेन के हकूक, रिश्तेदारों के, यतीमों के, मिस्कीनों के, मुसाफिरों के, तो जो भी दो इंसानों के हकूक हैं जो आपस में उनके लिए जो है वो लाजिम है, तो उनको पूरा करना भी जो है वो जरूरी है। अब आप देखें कि इस मुख्तसर से फिक्रे से ये जो तमहीदी जुमला है, अब इसके बाद बताया जा रहा है कि वो क्या हुकूक है जो अल्लाह ताला ने जो है वो लाजिम तौर पर करने के लिए कहा है। फिर इसके बाद फरमाया उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनामी, उहिल्लत हलाल किए गए, लकुम तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए, बहीमतु चार पाए चौपाए, अलानामी चुगने वाले। अब आप देखिए कि यहां पर बताया जा रहा है कि ऐ ईमान लाने वालों तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए। और क्या हलाल किए गए, यहाँ पे दो लफ्ज आप पढ़ रही हैं, एक बहीमा का है दूसरा अलानाम का है। पहले हम देख लेते हैं कि बहीमा किसे कहते हैं। इसका रूट है बा हा मीम और इसके मानी होते हैं गैर वाजे मुबहम चीज। और बहीमा उन जानवरों को भी कहते हैं जो कि गैर जविल अकूल होते हैं या जिनकी बात जो है या जिनकी बोली जो है वो लोग समझ नहीं पाते, तो बहीमा। क्योंकि बहीमा ऐसे जानवर जब वो अपनी आवाजें निकालते हैं तो उनकी जो आवाजें हैं ना दूसरे लोग उसको समझ नहीं पाते, तो इसलिए उनको बहीमा कहा जाता है। आप उर्दू में भी कहती हैं कि फलां की गुफ्तगू मुबहम थी, समझ नहीं आ रही थी, वाजे नहीं थी, तो बहीमा। और इसके साथ ही यहां पर दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है अलअनाम का। अलअनाम जो है नून आयन मीम रूट है, ये वैसे आपको पता है पहले पढ़ चुकी है, इसमें जिन्स है, नेमत को भी कहते हैं, अच्छी हालत को कहते हैं, तो नाम से अनआम जमा है। अनआम का लफ्ज अरबी जबान में चार किस्म के जानवरों पर इस्तेमाल किया जाता है, आप नोट कर लीजिए। नंबर एक ऊंट, नंबर दो गाय, नंबर तीन भेड़ बकरी। और वैसे फिर इसके अंदर जैसे गाय के साथ भैंस भी आ जाती है, ये चीजें आ जाती हैं। तो पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया कि तुम्हारे लिए जो है वो हलाल कर दिया बहीमा को। अगर आप बहीमा देखें तो मानी क्या है, तमाम जानवर हलाल कर दिए। अलनाम ने उसको जो है वो महदूद कर दिया। अलनाम का लफ्ज जब इस्तेमाल हुआ तो उसने बहीमा के अंदर जो है वो बाउंड्री कायम कर दी कि बहीमा का लफ्ज आम था, अनाम ने उसको खास कर दिया। तो तुम्हारे लिए अगर होता ना कि तुम्हारे लिए बहीमा जो है वो हलाल कर दिए गए तो तमाम जानवर होते, लेकिन कहा कि तुम्हारे लिए सब जानवर जो के अलानाम की किस्म के हैं, जो के मवेशी की किस्म के हैं, वो हलाल कर दिए गए। मुराद पालतू जानवर हैं जैसे ऊंट गाय भैंस बकरी, और इसकी आठ किस्में हैं। सूरत अलानाम में आप अलानाम की आठ किस्में पढ़ेंगी और घरेली जानवरों की आठ किस्में जो कि हमारे लिए हलाल कर दी गई। तो चार जैसे मैंने आपको बताई ना, तो चार मुजक्कर और चार मुअन्नस। अब यहां पर जो है ये बात भी समझना जरूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बता दिया कि तुम्हारे लिए जो है वो अल्लाह नाम की किस्म के, मवेशी की किस्म के सब जानवर हलाल कर दिए गए। اس سلسلے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ انعام کا لفظ جیسے نعم جانور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ کو انعام اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی چال میں نرمی ہوتی ہے، اور اس میں جیسے ہرن ہے، نیل گائے ہے، یہ چیزیں بھی اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں. اور حدیث کی روح سے وہ جانور جو ذو ناب ہیں اور وہ پرندے جو ذو مخلب ہیں. تو یہ جانور جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کیونکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. آپ نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ان کل ذی ناب من السبائی و کل ذی مخلب من الطیور، کچلی والے درندوں اور پنجے میں پکڑ کر کھانے والے پرندوں کے کھانے سے جو ہے وہ منع کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کچلی والے درندے کون ہوتے ہیں، جیسے شیر، چیتا، ریچھ، ہاتھی، بھیڑیا، کتا، گیدڑ، لومڑ، جیسے ان کے دانت ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، تو کچلی کے دانت، تو کچلی والے درندے جو کہ چیر پھاڑ کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ کھانے سے منع کیا. اور ذی مخلب کے معنی ہوتے ہیں جو پنجے سے جو ہے وہ شکار کرتے ہیں، جیسے شاہین، چیل، شکاری پرندہ، الو، عقاب وغیرہ. تو یہ جو ہے یہ حرام ہیں، درندے بھی حرام ہیں جو کہ دانتوں سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے مارتے ہیں، شکار کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ پرندے بھی جو کہ پنجے سے جو ہے وہ کرتے ہیں. پھر فرمایا اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے ان کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے جائیں گے. اللہ یہ حرف استثناء ہے، ایکسیپشن ہے، مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، جس کی تلاوت کی جائے گی تم پر، آگے چل کے جس کی تلاوت تم پر کی جائے گی. تو آگے چل کر جس کی تلاوت کی جائے گی سے مراد ہے، یہاں ہم آیت نمبر 1 میں ہے نا، اب سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اس کی تفصیل پڑھیں گی کہ اور کون سے جانور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں. پھر مزید فرمایا کہ غیر محل الصید و انتم حرم. اب یہاں پر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ غیرہ کا لفظ نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ نہیں، محلی جو ہے اس کے معنی ہے جیسے محل، اور ویسے حلال کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، کہ محلی محل میں ہے، حلال جاننے والے السیدی شکار کو، غیرہ محلی السیدی، حلال جاننے والے نہ بنو، وہ انتم حرم، جبکہ تم احرام میں ہو. معنی کیا ہے اس کے؟ کہ حالت احرام میں شکار کو حلال ماننے والے مت بنو، کہ حالت احرام میں شکار کرنا تم پر حرام کر دیا گیا. اب یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے نا کہ جو اللہ احکامات تمہیں دیتا ہے اس کو ماننا تم پر فرض ہے. اب احرام جو ہے یہ کیا ہے؟ احرام اس فقیرانہ لباس کو کہتے ہیں جو زیارت کعبہ کے لیے پہننا چاہتا ہے، اور یہ جو احرام کا لباس پہن لیا جاتا ہے، بظاہر یہ ایک لباس ہے، لیکن احرام باندھنے سے، پہننے سے آدمی پر بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو معمولی حالات میں حلال ہیں، جیسے حجامت، خوشبو کا استعمال، ہر قسم کی زیب و زینت، فضائے شہوت، میاں بیوی کا تعلق. تو احرام کی حالت میں وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو عام دنوں میں حلال ہوتی ہیں. تو جہاں پہ اور احرام کی پابندیاں ہیں، ان میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ کسی جاندار کو ہلاک نہ کیا جائے، کسی جاندار کا شکار نہ کیا جائے، اور نہ کسی شکار کا پتہ بتایا جائے، کہ خود بھی شکار نہیں کرنا اور دوسرے کو بھی شکار کی طرف جو ہے اس کی رہنمائی نہیں کرنی، اشارہ بھی نہیں کرنا کہ فلاں جگہ شکار ہے اور تم جاؤ اور شکار جو ہے وہ کر لو. तो इससे जो है वो मना कर दिया गया। इस सिलसिले में मैं आपके सामने एक वाकया रखती हूँ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा का वाकया है कि हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह फरमाते हैं कि हम हुदैबिया के साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुए और अपने चंद साथियों समेत जो एहराम बांधे हुए थे पीछे रह गए, लेकिन अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हों ने एहराम नहीं बांधा था। इन एहराम बांधे हुए हमराइयों ने एक गोरखर देखा जिस पर अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हों की नजर ना पड़ी। उन्होंने भी अबू कतादा को शिकार के मुतालिक कुछ ना बताया। अब आप देखें कि सब सहाबा ने एहराम बांधा हुआ और हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हों ने एहराम नहीं बांधा हुआ। अब जिन्होंने एहराम बांधा हुआ था उन्होंने जो है वो ये एक गोरखर देखा जो कि जो है वो खरगोश की तरह का जानवर था। अब उन्होंने देखा और हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हों ने नहीं देखा। अब ये जो एहराम बांधे हुए सहाबी थे ना तो ये शिकार खुद कर सकते थे, वो हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हों को इशारे से भी नहीं बता सकते थे कि वो है तुम उसका शिकार कर लो, क्योंकि एहराम की पाबंदियों में से क्या है कि आप शिकार भी नहीं कर सकते और ना ही आप शिकार के करने में मदद कर सकते हैं, ना आप इशारा कर सकते हैं। हाँ, अगर इनको कोई शिकार का जानवर जिबा करके भून कर पेश कर दे तो खा सकते हैं ये। अब ये कहते हैं कि हमारी नजर पड़ी लेकिन अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हों की नजर ना पड़ी और हमने जब देखा तो हमने उनको बताया भी नहीं, हत्ता के अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हों की खुद शिकार पर नजर पड़ गई। वो अपने घोड़े पर जिसका नाम जुरादा था सवार हुए और अपने साथियों से कहा जरा मेरा कोड़ा मुझे पकड़ा दो, लेकिन उन्होंने इनकार किया। क्यों? इसलिए कि वो मदद नहीं कर सकते थे, एहराम की हालत में थे। आखिर अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हों ने खुद उतर कर अपना कोड़ा लिया और इस गोरखर पर हमला किया और उसे जख्मी करके गिरा दिया। फिर अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हों ने इस शिकार में से खुद भी खाया और इन साथियों ने भी खाया जो एहराम बांधे हुए थे। फिर जब ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिले और इनसे किस्सा बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या इस शिकार का कुछ गोश बाकी है? अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हों ने कहा कि हाँ एक रान है। चुनाचे आपने वो रान ले ली और इसमें से गोश जो है वो खाया। तो अब आप देख लीजिए कि एहराम की जो चंद पाबंदियां हैं उनमें से एक पाबंदी क्या है कि एहराम की हालत में शिकार किया नहीं जा सकता और ना करने में मदद दी जा सकती है। तो यहां पे यही बताया जा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया गैरा मुहिल्ली सईदी वन तुम हुरुम, कि एहराम की हालत में शिकार को अपने लिए हलाल न कर लो। इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ चाहता है हुक्म देता है, इसके मानी ये हैं कि अल्लाह जो है वो हाकिम मुतलिक है। अल्लाह के सिवा किसी को यह हक नहीं है कि वो जो है वो अहकामात दे, बल्कि अल्लाह के अहकामात जो हैं हकीमाना हैं और मुसलमानों को उसकी अताअत करना फर्ज है। और अल्लाह इस बात का मालिक है कि जिस चीज को चाहे हराम कर दे, जिसे चाहे हलाल कर दे। क्यों? सारी चीजों का वो मालिक है। अब आप देख लीजिए कि अल्लाह ने हलाल और हराम का जो कानून नाफिज किया उसमें बड़ी हिकमत है, बड़ी बसीरत है। अदना को आला के लिए गिजा बनाया। आप जरा गौर करें, जमीन की मट्टी है ये दरख्तों का खाना है, उसकी गिजा है, और दरख्त जानवरों का खाना, और जानवर इंसान का खाना, उसकी गिजा। अब इंसान से आला कोई मखलूक इस दुनिया में नहीं है, इसलिए इंसान किसी की गिजा नहीं बन सकता। तो यहां पे बताया जा रहा है कि बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है। अब आप यहां पे पढ़ेंगी कि एक आयत है और देखें कि इसके अंदर जो है वो कितनी अहम बातें हमारे सामने आई। तो आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक अल्लाह से बांधे हुए हर अहद को पूरा करने की ताकीद की गई, जिसमें जो है वो हराम महीने भी हैं और जो शायर हैं, जो हुरमतें हैं वो भी हैं, और उसके साथ नेकी और तकवा के कामों में तावन करना और गुनाह के कामों में तावन ना करना है। दूसरी आयत हम पढ़ते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो। پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے مخاطب کیا، اے ایمان لانے والو. یہ جو جملہ ہے نا، یہ بڑا جامع جملہ ہے، یہ سوتوں کو جگاتا ہے، جو سست ہیں ان کو جو ہے وہ ایکٹیو کرتا ہے، اور جن کا ایمان مر چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے، ان کو توجہ دلاتا ہے کہ تمہارا ایمان جیتا جاگتا ہونا چاہیے، بے قرار، کچھ کر گزرنے والا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ کر لو. لا تحلوا، ان کی بے حرمتی نہ کرو. شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی. شعائر جو ہے اس کا روٹ ہے شین عین را. ویسے تو آپ دیکھیں کہ شین عین را بال کو کہتے ہیں، تو بال کی مانند باریک علم حاصل کرنا. جیسے شعر بھی ہوتا ہے، شعر بھی ہوتا ہے، اشعار ہے جیسے، تو شاعر جو ہے نا یہ کیا ہے کہ اس کے معنی ہے کہ ہر وہ چیز جو کسی عقیدے، کسی بیلیف یا کسی نظام، کسی آئیڈیولوجی، اس کی نمائندگی کرتی ہو، وہ شعر کہلائے گی. جیسے کسی بھی ملک کا جھنڈا ہے، اس کی فوج کا یونیفارم ہے، پولیس ہے، اس کا جو سکہ ہے، نوٹ جو ہوتے ہیں یا سٹیمپ ہوتی ہے، تو وہ کیا ہے کہ وہ ان کے شاعر ہیں. جیسے گرجا، قربانگاہ، صلیب، یہ عیسائیت کے شاعر ہیں. اسی طرح کیس، کڑا، کرپان، یہ سکھ ازم کے شاعر ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے جو شاعر ہیں وہ کیا ہیں، جیسے حج، عمرہ، پھر جو ہے وہ مسجد، یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ مسلمانوں کے جو ہیں وہ شاعر ہیں. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو. اس کے معنی یہ ہیں کہ جو بھی کسی کا جیسے مونوگرام ہے، ٹریڈ مارک ہے، تو اس کی بے حرمتی نہیں کرنی. جیسے مسلمانوں کی اگر نماز، اذان، مسجد، صفا، مروہ ہے، اسی طرح دوسرے مذہب کے بھی جو شعائر ہیں نا، ان کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. اس کا ادب کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کو پامال نہیں کرنا چاہیے. اور یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہر مذہب اور ہر نظام کی جو ان کا مونوگرام ہے یا ان کا ٹریڈ مارک ہے، جو ان کی کچھ نشانیاں ہیں، تو ان کا احترام کرنا ضروری ہے. کیا کرو کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو. اصل میں آپ یاد رکھیں اس بات کو کہ مسلمان اور مکہ کے مشرق، ان کے درمیان جنگ تھی. مکہ پر مشرق قابض تھے، اور عرب کے ہر حصے سے مشرق قبائل جو تھے وہ حج اور زیارت کے لیے کعبہ کی طرف جاتے تھے. اب جیسے حجۃ الوداع کے موقع پہ تو مسلمانوں نے حج کر لیا، لیکن اس سے پہلے صلح حدیبیہ کا جو موقع تھا، اس پر مسلمان جب عمرہ کرنے گئے تو اہل مکہ نے ان کو روک دیا تھا، ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا تھا. تو جب کافروں نے مسلمانوں کو روکا، اب اس بات کا اندیشہ تھا کہ عرب کے مختلف علاقوں سے مشرق قبائل وہ حج اور زیارت کے لیے جب کعبہ کی طرف جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان جو ہیں وہ، جو بے شک وہ مشرک ہیں، لیکن ان کے پاس قربانی کے جانور ہیں اور وہ جا رہے ہیں حرم کی طرف، تو کہیں مسلمان ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں، کہیں مسلمان ان پر حملہ نہ کر دیں. تو اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ مشرک ہیں اور ان کا عقیدہ بہت خراب ہو چکا ہے، لیکن جو کچھ بھی ان کے اندر خدا پرستی کی علامت پائی جاتی ہے، تو ان پر ہاتھ نہ اٹھانا. بگڑے ہوئے مذہب میں خدا پرستی کا جتنا حصہ ہے، تم اس کا احترام کرنا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو. ولا الشہر الحرامی، اور نہ ہی حرام مہینوں کو. حرام مہینے کتنے ہیں؟ چار، رجب، ذوالقعد، ذوالحج اور محرم. ان کو بھی اپنے اوپر جو ہے وہ حلال نہ کر لو، ایسا نہ ہو کہ اس میں تم جنگ کرنے لگو. ولا الہدیہ، اور نہ ہی قربانی کے جانور. ہدیہ، یہی اس کا روٹ ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ قربانی کے جانور. القلائدہ، قلائد جو ہے اس کا روٹ ہے قاف لام دال، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں رسی کو بل دینا. قلادہ کہتے ہیں بل دی ہوئی چیز جو گردن میں ڈالی جاتی ہے، جیسے پٹا. کیونکہ اب جیسے قلائد جمع ہے، قلادہ واحد ہے، تو اب رسی کو بٹ دے کر، بل دے کر گردن میں ڈال دیا جاتا ہے. تو جو وہ جانور لاتے تھے قربانی کے لیے حرم کی طرف، تو ان کے گلوں میں قلادہ ڈالا ہوتا تھا، جیسے ہار، پٹی، رسی وہ جانوروں کے گلے میں لٹکا دیتے تھے. اور جس جانور کے گلے میں جو ہے وہ رسی ڈلی ہوئی ہوتی تھی، اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ یہ قربانی کے جانور ہیں. اور قلائد ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کوئی اس کو چھیڑے نہ، کوئی اس کو تنگ نہ کرے، وہ جس کھیت میں چاہیں چریں، وہ جہاں سے چاہیں گزریں. کیونکہ نظر خداوندی کی علامت کی پٹی ڈالی ہوئی ہوتی تھی. تو کہا کہ نہیں، قربانی کے جانوروں کو تنگ کرنا ہے ولل قلائدہ، اور نہ ہی اللہ کی نظر ماننے میں جو جانور ہیں، ولا اور نہیں. آمین البیت، آمین. آمین جو ہے اس کا روٹ ہے حمزہ میم میم، اس کے لفظی معنی ہے سیدھا مقصد کی جانب متوجہ ہونا، کسی کی طرف جو ہے وہ رخ کرنا، ارادہ رکھنا، کسی راستے یا سفر کا ارادہ کرنا، سیدھا مقصد کی جانب متوجہ ہونا. تو آمینہ پھر اس کے معنی کیا ہے کہ جانے والے، ارادہ کرنے والے. البیت الحرام، بیت الحرام کی طرف. تو ولا، ولا کس لیے آیا ہے؟ اور ان کو نہ چھیڑنا. آمینہ جانے والے ہیں کون؟ لوگ جو کہ جانے والے ہیں، ارادہ کرنے والے ہیں. البیت الحرام، بیت الحرام کا مکان محترم، خانہ کعبہ کی طرف جو لوگ جا رہے ہیں ان کو بھی نہ چھیڑنا. وہ کون لوگ ہیں؟ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اپنے رب کا فضل چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی اور اس کا فضل جو ہے اس کی تلاش میں جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں، جبکہ مسلمان اور مکہ کے جو مشرک تھے ان کے درمیان کیا تھا؟ ایک کشمکش تھی، ایک جنگ کی سی حالت تھی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ کہہ کر پھر چند چیزوں کو خاص طور پر نمایاں کر کے سامنے رکھا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ بس اسی کا احترام کرنا ہے، اوروں کا نہیں کرنا، سب کا کرنا ہے. لیکن یہاں پہ خاص طور پر کہا کہ حرام مہینے قربانی کے جانور، اور وہ جانور جن کے گلوں میں خدا کی نظر کے پٹے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو حرم کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کی طرف، اور وہ چاہتے ہیں اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی. تو تم کہیں ان کو نہ چھیڑنا. فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ پھر تم شکار کر سکتے ہو. حللتم کا مطلب کیا ہے؟ احرام اتار دیا تم نے، احرام کی حالت ختم ہو جائے. فَاصْطَادُوا تو شکار کر لو. فَاصْطَادُوا آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے ذرا نیا سا مشکل سا لفظ لگ رہا ہے، لیکن آپ پہلے اس کو پڑھ چکی ہیں. اس کا روٹ ہے سواد یا دال، اور اس کے معنی ہے کسی چیز پر قدرت حاصل کر کے پکڑ لینا، حیوانات کو پکڑنا یا شکار کرنا. صید ہوتا ہے نا شکار، اور اس سواد ہوتا ہے شکار کرنا. تو فرمایا کہ جب تم احرام کو اتار لو، جب تم حلال ہو جاؤ، فاصطادوا تو شکار کر سکتے ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور تمہیں آمادہ نہ کرے اور تمہیں نہ ابھارے. جیم را میم اس کا روٹ ہے، اس کے معنی ہے ابھارنا، آمادہ کرنا، ایسی چیز جو کسی دوسری چیز کا محرک بنے. جرم بھی اسی سے ہے نا. جرم میں کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان جو ہے پھر گناہ کرتا ہے. جیسے جرم کی جمع ہے جرائم، اور جرم کی جمع ہے اجرام. اور یہاں پہ جرم، اجرام معنی کیا ہے؟ آمادہ کرنا، ابھارنا. نون جو ہے اس پر شد آئی ہے، اور اس میں اور تاکید کے معنی پیدا ہو گئے. اور تمہیں ہرگز نہ ابھارے، اور تمہارے لیے باعث نہ بنے. شنعانو دشمنی. اب آپ دیکھیں کہ یہ لفظ آپ کے لیے نیا نہیں ہے، آپ پہلے اس کو پڑھ چکی ہیں سورت الکوثر میں. انا اعطیناک الکوثر، آتی ہے نا آپ کو یہ چھوٹی سی سورت جو ہے، آپ سب کو آتی ہے. فصلی لربک وانحر ان شانیہ کا ہوا الابتر. شانیہ تو उसका भी यही लफ्ज है और यही रूट है। तो शनान जो है ये दुश्मनी के लिए आता है और शानी दुश्मन को कहते हैं। रूट है इसका शीन नून हमजा। इसके मानी है दुश्मनी की वजह से किसी चीज से नफरत करना, दुश्मनी, अदावत। तो फरमाया कि तुम्हें मत उभारे शनानु दुश्मनी कौमिन किसी कौम की। तो किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे क्या, अन सद्दू कुमानिल मस्जिद हरामी, कि तुम उन्हें रोको मस्जिद हराम से। सद्दू कुम स्वाद दाल दाल, सद्दा या सुद्दू इसका मतलब होता है रोकना, रोकना, खुद रुकना, दूसरों को रोकना। तो देखो ऐसा ना हो कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इतना गुस्सा दिला दे कि तुम उन्हें जो है वो मस्जिद हराम से रोक दो। और उस कौम ने क्या किया था कि एक गुरुओं ने तुम्हारे लिए मस्जिद हराम का रास्ता बंद कर दिया, तो तुम पर तुम्हारा उस पर तुम्हारा गुस्सा तुम्हें इतना मुश्तइल ना कर दे कि तुम भी इनके मुकाबले में ये ज्यादतियां करने लगो। क्योंकि अहले मक्का ने सुलह हुदैबिया के मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था और आप जो है आपने अपने सहाबा से कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं उमरा कर रहा हूं, और आपने अपने सहाबा को जब ये ख्वाब सुनाया और ये 6 हिजरी का वक्त था जबकि आपके साथ तकरीबन 1400 मुसलमान जो थे वो उमरा करने के लिए जा रहे थे और अहले मक्का ने आपको उमरा करने से रोक दिया था। अब मुसलमानों को समझाया जा रहा है कि अगर एक कौम ने तुमसे ज्यादती की है तो कहीं ऐसा ना हो कि उस पर तुम्हारा गुस्सा तुम्हें इतना मुश्तइल कर दे कि तुम भी उनके मुकाबले में ज्यादतियां करने लगो। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हरामी अन तअतदू, कि तुम ज्यादतियां करने लगो। क्योंकि कुफारे मक्का ने मुसलमानों को जब काबे की ज्यारत से रोक दिया, अब कहीं ऐसा ना हो कि जब काफिरों के कबीले मुसलमानों के रास्ते से गुजरने लगे तो मुसलमान भी उनके काफिलों पर छापा मारे या उन्हें हज से रोक दें। व तआवनू अलल बिर्रि व तक्वा, नेकी के और खुदा तरसी के कामों में तआवुन करो। वला तआवनू अलल इस्मि वल उदवान, और गुनाह और ज्यादती के कामों में तआवुन मत करो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, बेशक अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अब यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि जहां तक है नेकी की बात, तकवा की बात, तो इसमें आपस में तआवुन करना चाहिए। और ये एक जो है वो मुल्क गीर बैनुल अक्वामी उसूल है, बाहमी तआवुन का कुरानी उसूल क्या है कि नेकी और तकवा के कामों में आपस में तआवुन किया जाए। और जहां पर बात है गुनाह की, उदवान ज्यादती की, फिर उसमें जो है वो तआवुन ना किया जाए। और ये बड़ा ही अहम उसूल है और इस सिलसिले में फिर जो है वो इस पे अमल करना तमाम मुसलमानों पर जो है वो लाजिम हो जाता है। अब आप देख लीजिए कि एक तरफ बिर है तो इसका ओपोजिट क्या है, इस्म। दूसरी तरफ तकवा है तो इसका जो ऑपोजिट है वो है उदवान। तो अमली जिंदगी में इस उसूल पर अमल करते हुए हम सबको जो है वो जिंदगी बसर करनी चाहिए। और ये नेकी का काम कोई भी कर रहा हो तो हमें हमें उसके साथ जो है वो तआवुन करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर यही बात जो है वो नुमाया करके हमारे सामने जो है वो रखी गई है कि जैसे अहले मक्का थे या अरब लोग थे, वो कहीं से भी गुजर कर जा रहे हैं हज और उमरा करने के लिए, खा वो मुशरिक हैं, उन्होंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, लेकिन तुम उनके साथ ज्यादती न करना और नेकी और तकवा के काम में जो है वो उनके साथ तआवुन करना। अब आप देखिए, मैं सोचती हूँ कि अगर इसी आयत पर तमाम मुसलमान जमातें, तमाम मसाजिद, तमाम मुसलमान अमल करें और आपस में एक दूसरे के साथ तआवुन करें तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए और इस्लाम कितना मजबूत हो जाए। तो अब यह है कि मुसलमान लोग हैं और मुसलमान जमाते हैं, वही आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ती रहती हैं कि बाज लोग, जैसे एक मस्जिद जो थी वो मस्जिद में ईद की नमाज के लिए मुसलमान जमा हुए और आपस में फिर उनकी लड़ाई होगी। एक ग्रुप ये कहता था कि ईद का वक्त इतना बजे होगा, दूसरा कहता था नहीं इतने बजे होगा। और आपस में लड़ने लगे और किसी ने फिर पुलिस कॉल कर दी और मस्जिद जो थी उसको लॉक कर दिया गया। तो आप देख लें कि ये एक नेकी का काम था, नमाज का पढ़ना और आपस में मिलजुल कर जो है वो एक वक्त मुकर्रर हो सकता था, लेकिन क्या हुआ कि मुसलमान जो थे उस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले वो आपस में ही जो है वो लड़ने लगे। और भी इस तरह की बेशुमार मिसालें हो सकती हैं और हम सबको इस बात पर सोचना चाहिए कि किस तरह जो है मुसलमान जो है वो उनके अंदर एक इत्तेहाद पैदा हो और एक जो है वो डिसिप्लिन जो है वो आए। तो उसके लिए जो है वो एक ही बात है कि नेकी और तकवा के कामों में जो है वो आपस में तआवुन करना चाहिए, और जहां तक गुनाह की बात है, जहां पर सरकशी की बात है, वहां पे आपस में तआवुन नहीं करना चाहिए। और अब जो है वो इस्लाम की मुखालफत जो है वो बाहर से दुश्मन से इस्लाम की मुखालफत का इतना डर नहीं है जितना कि मुसलमान अंदर से उठकर जो है मुखालफत करते हैं। मुसलमानों में से लोग कहते हैं कि नहीं जो है वो इस्लाम का खानदानी निजाम नहीं चाहिए, कोई कहता है कि नहीं हमें मईशत का निजाम नहीं चाहिए, हमें तो वो तो मगरिब का ही ठीक रहेगा। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि मगरिब से उधार लेकर मुसलमान जो है वो उस पर चलना चाहते हैं। कहा वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह की पकड़ जो है वो बड़ी सख्त है। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 3 है और आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चंद अहम बातें हमारे सामने रखी हैं, और कहने को ये एक आयत है और इसके अंदर जो है वो 11-12 बातें हैं जो हमारे सामने आई हैं एक आयत के अंदर। आइए इसे देखते हैं। इसमें बहुत से उसूली फरोई अहकाम जो है वो बयान किए गए हैं, और पहला जो मसला है वो हलाल और हराम जानवरों का है। पीछे आपने पढ़ा था ना आयत नंबर 1 में, इल्ला मा युतला अलैकुम, जो आगे चल के तुम्हें बताया जाएगा, ये है उसकी अब तफसीर। कहा हुर्रिमत अलैकुमुल मैतातु, कि तुम पर हराम किया गया मुर्दार। मुर्दार वो जानवर जो तबई मौत जो है वो मर गया हो। मुर्दार जानवर से मुराद वो है जो बगैर जिबा के किसी बीमारी की वजह से या तबई मौत से मर जाए। तो ऐसे मुर्दार जानवर का गोश्त तिब्बी तौर पर भी इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह है और रूहानी तौर पर भी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीजों को मुर्दार में से जो है वो हलाल करार दिया, उसके खाने की इजाजत दी, एक मछली और दूसरे टिड्डी। इसे मुसनद अहमद ने रवायत किया है। तो जब आपसे ये कहा जाए कि हराम जो है हराम कर दिया गया तुम पर अलमैता यानी मुर्दार तुम पर हराम कर दिया गया, और मैं आपसे पूछूं कि मुर्दार तो सब हराम है लेकिन दो हलाल हैं, तो फिर आपको याद होना चाहिए कि एक मछली और दूसरे टिड्डी। और कहां से पता चलता है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से। दूसरा है वद्दमु, और दम का लफ्ज जो है ये खून के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरी चीज जिसको इस आयत ने हराम करार दिया वो दम यानी खून है। और कुरान मजीद की एक और आयत है कि दमम मस्फूहा, उसमें खास तौर पर बताया कि बहने वाला खून जो है ना वो हराम है। अच्छा, इसलिए जिगर तिल्ली बावजूद खून होने के वो हलाल है। तो जिस तरह मैता से मछली और टिड्डी जो है उसको एक्सेप्शन करार दिया गया, बिल्कुल इसी तरह से जिगर और तिल्ली जो है ये भी हलाल है। तो वह दमो और खून भी कैसा जो कि बहता हुआ खून जो है वो हराम है। जैसे मसलन जानवर जब जिबा किया जाता है तो खून बहता है जो उससे निकल जाता है। अब ये कि बास खून साथ लगा हुआ होता है तो उसका कोई मसला नहीं है। इसी तरह ये तिल्ली और जिगर जो है ये भी हलाल है। फिर तीसरी चीज है वह लहमुल खिंजीरी और सुअर का गोश्त। लहमुल खिंजीर जो है, लहम से मुराद उसका पूरा बदन है। लहम का लफ्ज इस्म जिन्स है, वह जमा मुजक्कर मुअन्नस हर तरह ये इस्तेमाल किया जाता है, और लहमुल खिंजीर से मुराद सुअर का पूरा बदन है जिसमें चर्बी, पट्ठे सब शामिल हैं। और सुअर के बारे में आप ये बात भी याद रखें कि खाने पीने की चीजों को जब अल्लाह ताला हराम कहते हैं या हलाल कहते हैं, तो उसकी बुनियाद जो है वो जैसे तिब्बी फायदे या नुकसान नहीं होते, बल्कि इखलाकी फवायद और नुकसान होते हैं। और अगर जैसे जिस्मानी तौर पर जिस चीज से नुकसान होता और उसको हराम करना होता, तो अल्लाह ताला सबसे पहले संखिए को हराम करता। जैसे जहर है ना, जो जहर खाता है वो मर जाता है, लेकिन अल्लाह ने उसको तो नहीं हराम करार दिया। तो कुरान मजीद, इस्लाम जो है शरीयत, गिजा के मामले में उसका जो है बुनियादी नुक्ता नजर ये है कि किसी गिजा का इंसान के अखलाक पर क्या असर होता है, गिजाएं तहारते नफ्स के लिहाज से कैसी हैं, और गिजा हासिल करने के तरीकों में कौन से तरीके इतकादी और नजरी हैसियत से सही हैं या गलत हैं। तो इस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत चीजों को हलाल करार देते हैं और हराम करार देते हैं। फिर इसके बाद चौथी बहुत अहम बात है, इसको आप सर्कल करें, ये बहुत सी औरतें और बहुत से मुसलमान इस बात को नहीं समझते, और वो क्या है, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बही, और वो जानवर जो अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर जिबा किया गया हो। अब आप देखें कि जानवर को जिबा करते वक्त अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो, जिसको जिबा करने से पहले ये नियत की गई हो ये फला बुजुर्ग, फला देवता या देवी की नजर है। जैसे बाज लोग ये कहते हैं कि दाता गंज बख्श के लिए बकरा देना है, उनके मजार के लिए बकरा, शेख अली हजवेरी या फला के नाम का, फला के नाम का, जुमेरात का फला पीर के नाम का, या 10वीं का फला बुजुर्ग के नाम का। अब देखिए कुरान के अंदर ये आयत लिखी हुई है, आप जरा इस पे गौर से देखें इसको, ममा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बही, वो जानवर जो अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर जिबा किया गया हो। अच्छा, बाज लोग ये कहते हैं कि हम किसी बुजुर्ग के नाम पर जब जिबा करते हैं तो हम अल्लाह का नाम भी उस पर लेते हैं ना, लेकिन ये बात याद रखें कि मुशरिकीन अरब अपने बुतों के नाम पर जिबा किया करते थे, या जैसे बाज लोग अपने पीरों के नाम पर जिबा करते हैं, और अगर वो लोग जिबा करते वक्त अल्लाह का नाम भी ले लें, मगर जानवर किसी गैर अल्लाह के नाम पर जब वो नजर कर देते हैं, तो मकसद उनका ये होता है कि वो अल्लाह के सिवा वो अपने बुजुर्गों की रजा चाहते हैं। तो जमहूर फुकहा ये कहते हैं मा उहिल्ला लिगैरिल्ला बही के तहत वो सारे जानवर हराम हो जाते हैं कि जिस पर जिबा करते वक्त अल्लाह के साथ वो बेशक किसी और का नाम ले। तो ये जो है ये चौथी अहम बात है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि शादी हुई तो हमने देख फला बुजुर्ग के नाम की, उनके दांत जो है वो उनकी मजार पर जाकर दी और बकरा दिया, और बच्चा पैदा हो गया तो फिर लेकर गए। बाज लोग अपनी बहू और दुल्हन को लेके जाते हैं, फिर देगे देते हैं, फिर चादर चढ़ाते हैं, और ये सारे अमल जो है मुशरिकाना अमल है। फिर इसमें पांचवी चीज है वल मुनखनेकातु, वल मुनखनेकातु, ये भी आप देखें तो बजाहिर बड़ा मुश्किल सा लफ्ज है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा तवज्जो से याद करें तो इंशाल्लाह आपको याद करना मुश्किल नहीं होगा। इसका रूट है खा नून काफ, और खन्नाक, ये एक ऐसी बीमारी होती है कि जब ये बीमारी होती है तो जानवर का गला जो है ना वो बंद हो जाता है, तो कहते हैं ना फलां को खन्नाक की बीमारी हो गई, और असल में फिर इसके मानी है कि वो जानवर जो गला घुट कर मर जाए या मारा जाए, जैसे गला घूंढ कर, गला उसका जैसे दबा कर उसको मार दिया जाए। फिर इसमें वो जानवर भी शामिल है जिसका गला ना घुटे मगर फंस जाए, जैसे कहीं किसी का गला ही फंस गया है, जैसे कलादा, उसने जो पट्टा पहना हुआ था, पहनाया हुआ था उसको, उसके अंदर उसका गला फंस गया और वो मर गया, तो ये उसमें भी आता है। तो वल मुनखनेकातु, कि वो जानवर जो गला घुट कर मरे। फिर नंबर 6 है वल मौकूजातु, इसका रूट है वो काफ जाल, और इसके मानी है कि वो काफ जाल के किसी को जैसे जोर से मारना, शिद्दते जर्ब, वो जानवर जो लाठी पत्थर या हाथ की सख्त चोट से मर जाए, सख्त चोट से मरे वो है वल मौकूजातु, किसी को लाठी पत्थर मारकर जो है वो मारा जाए और फिर वो मर जाए, मौकूजा। फिर नंबर 7 है वल मुतरद्दियातु, वल मुतरद्दियातु इसका रूट है रा दाल या, किसी चीज को इस तरह बुलंदी से जमीन पर या जमीन से गड़े में पटक देना कि वो हलाकत को पहुंच जाए, वल मुतरद्दियातु। और आप देख लें कि जैसे रद्दी नहीं होती, आप इससे याद कर लें, रद्दी को आप क्या करती हैं, उठाती हैं, दूर फेंक देती हैं कि ये चीज रद्दी है, रद्दी चीजों को उठाकर फेंक दिया जाता है ना, तो किसी चीज को इस तरह बुलंदी से जमीन पर या जमीन से गड़े में पटख देना कि वो हिलाकत को पहुंच जाए, तो वल मुतरद्दी या तू मानी है जो या बुलंदी से गिर कर मर जाए। फिर नंबर 8 है वन नती है तू, वन नती है तू, इसका रूट है नून तोए हा, सींग, सींग को कहते हैं, सींग या टक्कर लगने से जो है वो मर जाना, या वो जानवर जो कि सींग के लगने से मर जाए, नती है तू। वैसे तो मानी है जैसे किसी की टक्कर लग गई, ये भी हो सकता है किसी जानवर की टक्कर किसी गाड़ी से, रेल से, ट्रेन से, या कोई जानवर किसी दूसरे जानवर की टक्कर से मर जाए, उसके लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देख लें कि ये 9 किस्में बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और क्या फरमाया, वन्नतीहा तू के बाद 9वीं किस्म क्या है, वमा अकल सबू, और जो खाया हो किसी दरिंदे ने, सबाऊ, सीन बाएन इसका रूट है, दरिंदे को कहते हैं, तो वो जानवर जो किसी दरिंदे ने फाड़कर खा लिया हो, ये 9वीं चीज हो गई। और इन 9 चीजें बयान करने के बाद फरमाया इल्ला मा ज़क्कै तुम, सवाए उसके जिसे तुमने जिंदा पाकर जिबा कर लिया। तो अब यहाँ पे जो है वो मुर्दार की 9 किस्में बताई हैं, और इन सब का ताल्लुक जो है वो हलाल और हराम जानवरों से मुतल्लिक है, और फिर इसमें जो है वो खून भी शामिल हो जाता है, और साथ ही ये भी फरमाया कि इल्ला मा ज़क्कै तुम, सवाए उसके जिसे तुमने जिंदा पाकर जो है वो जिबा कर लिया। इसके मानी ये हैं कि जो मंदरजा बाला हवादिस हैं या हादसात हैं, कोई भी जानवर इन हादसे का शिकार हो जाए, मरा नहीं है, जैसे कोई ऊपर से नीचे गिर गया है, कोई चोट किसी को लग गई है, किसी ने टक्कर खाई है, किसी का गला घुट गया है, कुछ भी उसको मसला हो गया, लेकिन अभी वो मरा नहीं है, अभी उसके अंदर जिंदगी के आसार पाए जाते हैं, तो अगर आप उसको जिबा कर लेते हैं तो उसको खाया जा सकता है। इल्लामा ज़क्कैतुम, ज़क्कैतुम का जो लफ्ज है जाल काफ या और जाल काफ वो, इसका रूट है भेड़ जिबा करना, पाक करना, और उसका मखसूस तरीका क्या है कि उसका खून बहाया जाता है, जिबा करके उस पर अल्लाह का नाम लिया जाता है और उसका खून बहा दिया जाता है ना, तो जब उसका खून बहाया जाता है और उस पर अल्लाह का नाम लिया जाता है तो जानवर पाक हो जाता है। इल्ला मा ज़क्कैतुम, जिसे तुमने जिंदा पाकर जिबा कर लिया, यानी जिसे तुमने पाक कर लिया। फिर फरमाया, अब मजीद बताया जा रहा है कि ये भी हराम है। तो ये 9 चीजें जो थी ये तो जानवरों से मुतल्लिक थी, अब जो है वो 10वीं एक किस्म बताई जा रही है कि ये भी वो जानवर हैं जो कि हराम है, ये कौन से हैं, हमा जुबिहा अल नुसुब, वो जानवर जो कि किसी नुसुब पर जिबा किया जाए। नुसुब जो है इसका रूट है नून स्वाद बा, इसके मानी है किसी चीज को खड़ा करके गाड़ देना, जैसे नेजा, इमारत, पत्थर को खड़ा करना, नसब करना। अब आप देखें कि जो है वो तमाम जगह मकामात जिनको गैर अल्लाह की नजरों ने आज चढ़ाने के लिए लोगों ने मखसूस कर रखा हो, वहां कोई पत्थर या लकड़ी की मूरत हो या ना हो, जैसे आस्ताने, इस्तेहान वगैरह, जैसे बाज इलाके, मजार, जगह ऐसी हैं किसी बुजुर्ग या देवता के नाम के लिए लोगों ने मखसूस कर दी है, और बास के साथ जो है उन्होंने कोई इमारत, पत्थर खड़ा कर दिया, नस्ब कर दिया है। असल में नस्ब का लफ्ज होता है किसी चीज को सीधे रुख जमीन में खड़ा करना, गाड़ देना, ये ज़वील आज़ाद है लफ्ज़ नसब जो है, इंसान का सख्त मेहनत और थकावट की वजह से जिस्म को सीधा ना रख सकना उसके लिए भी आता है और सीधा करना उसके लिए भी आता है। तो बहरहाल, और वो जो किसी आस्ताने पर ज़िबा किया गया हो, तो वो जगह जहां पत्थर या लकड़ी को गाड़ कर उसको एक आस्ताने मज़ार की शक्ल दे दी गई। अब आप देखें कि बाज लोग जाते हैं और पीर के जैसे पीर के नाम का ज़िबा करते हैं, या ये कि किसी मजार पे जाके ज़िबा करते हैं और अल्लाह के नाम का ज़िबा करते हैं, कहा वो भी हराम है। बाज़ लोग कहते हैं ना कि दाता के दरबार पे हम गए या फलां बुजुर्ग के दरबार पर हम गए और हमने जाकर ज़िबा किया, तो कहते हैं कि हमने मजार पर जाकर किया लेकिन नाम तो अल्लाह का लिया था। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि बेशक वो जो है जब वो ज़िबा करते हैं उस खास जगह पर जाकर, तो वो भी जो है वो हराम है। वान तस्तक्सिमु बिल अज़लाम, तो ये भी तुम्हारे लिए नजायज है, ये भी हराम है कि 500 के जरिए तुम अपनी किस्मत मालूम करो। और यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया गया है तस्तक्सिमु, इसका रूट है काफ सीन मीम पसम, और इसके मानी है तकसीम करना, किस्मत मालूम करना, बांटना, कसमा। इस सिलसिले में आप ये बात याद रखें कि अरबों के यहाँ ये रिवाज होता था कि वो लोग क्या करते थे कि उन्होंने जो है वो हुबल देवता के बुत को खाना काबा के अंदर मखसूस किया हुआ था, उस पर उन्होंने 7 तीर रखे हुए थे और उन 7ों तीरों पर मुख्तलिफ अल्फाज लिखे हुए थे कि किसी काम के करने या ना करने का सवाल, या कोई भी चीज का पता मालूम करना, या खून के मुकदमे का फैसला। तो फिर जो है वो हुबल जो बुत था उस पर एक आदमी बैठा होता था, वो उसको कुछ पैसे देते और फिर हुबल से दुआ मांगते कि हमारे इस मामले का फैसला कर दे। और वो जो आदमी होता था वो सारे तीरों को घुमाता था, उनके जरिए फाल निकालता, और जो तीर भी फाल में निकल आता उस पर लिखे हुए लफ्ज को हुबल का फैसला, बुत का फैसला समझा जाता। यहाँ पे यही कहा जा रहा है वह अन तस्तक्सिमु, और ये के तस्तक से मुंह के मानी है ये के तुम किस्मत मालूम करो, बिल अजलाम तीरों के जरिए। अजलाम जो है इसका रूट है जे लाम मीम, जे लाम मीम, और मुराद है तीर। तो जलमुन जो है वाहिद है, उस तीर को कहते हैं जिस पर पर ना हो, और अजलाम जो है वो इसकी जमा है। तो फरमाया ये कि तुम तीरों के जरिए किस्मत जो है वो मालूम करो। और आज आजकल लोग और कैसे किस्मत मालूम करते हैं, जैसे बाज लोग जो है परिंदा उड़ाकर, या फिर ये कि पैंचा मुड़ जाता है उसको जूती उल्टी हो गई, कौवा के बोल गया सामने, या ये के बाज लोगों का आना अपने लिए अच्छा नहीं समझते, तो मुख्तलिफ तरीके से लोग शगुन लेते हैं। तो बहरहाल, तीरों के जरिए किस्मत मालूम करना या बाज हादसात और वाकयात के जरिए, जैसे मुशरिकाना फालगिरी, तो हम परस्ती, जुए की तमाम किस्में, वो भी इसके अंदर जो है वो आ जाती हैं, जिसमें लॉटरी भी है। और इसके अलावा और भी लोग जैसे जुआ खेलते हैं घोड़ों के जरिए, पैसों के जरिए, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं और ये हराम है। ज़ालिकुम फिस्क, ये सब अफाल फिस्क हैं। अल्यौमा यैसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज काफिरों को तुम्हारे दीन की तरफ से पूरी मायूसी हो चुकी है। यैसा या हमजा सीन, इसका रूट है और इसके मानी है मायूस, मायूसी के। तो आज काफिरों को तुम्हारे दीन से मुकम्मल मायूसी हो चुकी है। फला तख्शौहुम वख्शौन, लिहाजा तुम उनसे ना डरो। वख्शौनी, नून के बाद या था जो गिर चुका है हरफेलियत, फरमाया उनसे ना डरो बल्कि मुझसे डरो। फिर कहा अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, आज के दिन पूरा किया तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को, वह अतमम और पूरा कर दिया, अलैकुम तुम पर नेमती नेमत अपनी, वरदीतु और पसंद किया मैंने लकुमुल इस्लाम दीना, तुम्हारे लिए इस्लाम को निजामे जिंदगी के लिहाज से। अब आप देख लीजिए यहाँ पर जो है वो बहुत ही एक अहम बात जो है वो सामने आ रही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि इस्लाम और मुसलमानों को अल्लाह ने इतनी ताकत अता की कि अब इस्लाम के दुश्मन मायूस हो चुके हैं, वो इस्लाम की ताकत को मिटा नहीं सकते। और योम अरफा 10 जुलहज को ये आयत नाजिल हुई। इस आयत के नजूल के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 81 दिन जिंदा रहे। इस आयत के बाद आयते दियत और आयते कलाला वगैरह भी नाजिल हुई। यहूदी हजरत उमर रजी अल्लाह से कहने लगे, तुम एक ऐसी आयत पढ़ते हो कि अगर वो आयत हम यहूदियों के बारे में नाजिल हुई होती तो हम उसे ईद का दिन करार देते। हजरत उमर रजी अल्लाह ने कहा, यह आयत कब और कहाँ उतरी? उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ रखते थे? ये आयत योम अरफा को उतरी और उस वक्त हम इरफात के मैदान में थे। तो यहूदी कहते हैं कि तुम ए मुसलमानों, तुम्हारे कुरान में एक ऐसी आयत है कि अगर हमारे पास तौरात में वो आयत नाजिल हुई होती तो उस दिन को हम ईद का दिन करार देते। और आयत कौन सी है? ये वाली आयत, सूरत अलमाइदा की आयत नंबर 3। और ये कब नाजिल हुई? इरफात के मैदान में। मौका कौन सा था? योम अरफा, 9 जुलहज का दिन था जिस दिन ये आयत जो है वो नाजिल हुई। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कह दिया कि मुसलमानों, आज दीन को तुम्हारे लिए जो है वो मुकम्मल कर दिया गया। अब आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी बात है जिसका ऐलान यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया है। और वो क्या? कि दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। इस आयत के हिस्से में 3 बातें हमारे सामने आती हैं। पहली चीज कि दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है, कामिल दीन, मुकम्मल दीन, शरीयत अल्लाह ने मुकम्मल दे दी। दूसरा, वातमम तो अलैकुम नेमती, और पूरी कर दी तुम पर अपनी नेमत। तो इस्लाम की नेमत जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों पर इसकी तकमील कर दी। इसके अंदर क्या है? क्या अब जो है वो आखिरी उम्मत पर अल्लाह की नेमत का जो है वो इतमाम है। आगाज गारे हिरा की पहली वही से हुआ। तकरीबन 23 साल की मुद्दत में अल्लाह ने इस नेमत को जो है वो मुकम्मल किया कि अल्लाह का दीन अपने कमाल को पहुंच गया और उम्मत पर अल्लाह की नेमत पूरी हो गई। वातमम तो अलैकुम नेमती। और तीसरी बात, वरदी तो लकुमुल इस्लाम दीना, और पसंद किया तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन की हैसियत से। इससे ये बात पता चलती है कि दीन इस्लाम जो है वो अल्लाह का पसंदीदा दीन है। अल्लाह ने इसको हमारे लिए चूज कर लिया है, मुंतखिब किया है। अब आप देख लीजिए कि यहूदियत और ईसाइयत जो है वो जो है अल्लाह ताला ने उन उसके लिए ये नहीं कहा कि वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, उनके लिए नहीं कहा कि इसको तुम्हारे लिए पसंद किया, बल्कि कहा कि इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन की हैसियत से। दीन के मानी होते हैं निजामे जिंदगी। इसके मानी क्या है? कि जिस पर जो है वो अमल किया जाए। फमन इस्तुर्रा, बस जो कोई जो है वो मजबूर किया जाए। निस्तुर्रा, द्वाद रा, इस्तरार मजबूरी को कहते हैं कि जो मजबूर हो जाए, बेबस हो, फी मखमसा, तिन भूख में। मखमसा, मखमसा जो है ये भूख की जो है वो एक हालत का नाम है, क्योंकि भूख के 3 दर्जे हैं। एक है जू, ये खाने की तलब होती है, ये पहला दर्जा है। दूसरा है मसगबा, ये जैसे कहत पड़ जाए, भूख लगी हुई है, खाने को मिल नहीं रहा, कहत का जमाना है। तीसरा है कि खुराक की कमी की वजह से इंसान का पेट जो है वो साथ ही जुड़ जाए, और ये है मखमसा। इसका रूट है खा मीम स्वाद, ये तीसरा दर्जा है। फरमाया कि जो भूख से मजबूर होकर इनमें से कुछ खा ले, गैरा मुतजानिफिन, गैरा मुतजानिफिन, गैरा नहीं, मुतजानिफ आप पहले पढ़ चुकी हैं। आप देखें, आपको बड़ा मुश्किल नया मोटा सा नजर आ रहा है। आपने पीछे पढ़ा था ना जनफ और हनफ, तो जनफ इसका रूट है, जी मुनफा, एक तरफ को झुक जाना, माइल होना, और हनफ यकसू होना, किसी तरफ ना झुकना, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्लिम हनीफ थे। तो कहा कि भूख से मजबूर होकर अगर ये जो हराम चीजें इनमें से कोई खा ले तो इसकी गुंजाइश है, लेकिन उसका इरादा गैरा मुतजानिफिन, गुनाह की तरफ झुकने का नहीं होना चाहिए, ले इसमें गुनाह की तरफ, बगैर इसके कि गुनाह की तरफ इसका जो है वो झुकाव हो। फाइन अल्लाह गफूर रहीम, तो बस बेशक अल्लाह माफ करने वाला और रहम करने वाला है। ये थी एक आयत जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो हलाल और हराम के तफसीली अहकामात जो हैं वो नाजिल किए और हमें ये बताया कि क्या चीजें हलाल हैं और क्या चीजें जो हैं वो हराम हैं। और याद रखिए कि दीने इस्लाम अल्लाह अल्लाह का पसंदीदा दीन है। लोग कहते हैं कि हम अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं, आप भी सोचती होंगी कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन आप साथ ही ये सोचें कि अल्लाह ने जो इस्लाम जो है वो ज़ाब्ता हयात के तौर पर हमारे सामने रखा है, तो क्या आप उस पर अमल करने के लिए अपने आप को तैयार पाती हैं? और अगर आप तैयार नहीं पाती, मोहब्बत जो है वो अल्लाह से करती हैं लेकिन अमल दीने इस्लाम पर नहीं करना चाहती, तो इसका ये मतलब है कि अल्लाह से जो मोहब्बत है इसका ये दावा जो है ये झूठा दावा है। तो जो सच्ची मोहब्बत है उसके मानी क्या है कि जो चीज अल्लाह को पसंद है फिर वो वही हमारी पसंद बन जानी चाहिए, फिर जो है वो दीने इस्लाम जो है उसको जारी करना, उसको फैलाना, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, फिर ये हमारी जो है वो जिम्मेदारी बन जाती है। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह का जो पसंदीदा दीन है फिर वो हमारी जो है वो हमारा ओढ़ना और बिछोना ना बने, फिर हमारी जो है वो पसंद और नापसंद का मायार ना बने। तो फिर हमें क्या करना है, अल्लाह के दीन को लेकर जो है वो दुनिया पर जो है वो फैलाना है। फिर इसके बाद फरमाया यह सलूना का माजा अहिल्ला लहुम, लोग पूछते हैं कि इनके लिए क्या हलाल किया गया, कुल कह दीजिए अहिल्ला लकुम अत्तैयबात, तुम्हारे लिए सारी पाक चीजें हलाल कर दी गई। आमतौर पे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या क्या चीजें हलाल हैं, वो हलाल की फहरिस्त मांगते हैं। दुनिया की हर चीज को लोग हराम समझते हैं और वो जिंदगी के हर मामले में कहते हैं कि हमें हलाल चीजों की, जायज कामों की फहरिस्त बताएं, और अगर उनके सामने फहरिस्त ना हो हर काम हर चीज को वो शक और शुबे की नजर से देखते हैं, कहीं वो हराम तो नहीं है। अब कुरान इसी जहनियत की इसलाह करता है क्योंकि पूछने वालों का मकसद ये था उन्हें हलाल चीजों की तफसील बताई जाए ताकि उन्हें फिर पता चल जाए कि ये हलाल है बाकी सब हराम। अब अल्लाह ताला ने जवाब में हलाल की फहरिस्त बताने की बजाय हराम की तफसील बताई और यह आम हदायत देकर छोड़ दिया कि बाकी सारी पाक चीजें हलाल हैं। कितनी खूबसूरत बात है कि बहुत बड़ी इस्लाह अल्लाह ताला ने की कि इंसानी जिंदगी को बंदिशों से आजाद करके दुनिया की वुस्सतों का दरवाजा खोल दिया। क्या फरमाया, सारी पाक चीजें जो है वो हलाल कर दी गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाक चीजें कौन सी हैं, कैसे पता चलेगा, क्योंकि पाक की कैद लगा दी ना। तो इस सिलसिले में जो है अहम बात यह है कि वो तमाम चीजें जो है वो पाक हैं जो शरीयत के उसूलों की रोशनी में पाक करार दी गई और जो हमें कुरानो हदीस से जो है वो पता चलती हैं, तो वो चीजें जो है वो पाक हैं और उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं फिर वो हराम हो जाती हैं। जैसे पाक और साफ चीजों से मुराद गली सड़ी बासी ना हो, नंबर दो हराम ना हो, इसी तरह चीर फाड़ करने वाले जानवर, शेर चीता मुर्दार खोर जानवर, कौवा चील गिद्ध और जमीनी कीड़े वगैरह भी ये हराम हैं। तो जो चीजें हमें इस तरह कुरान और सुन्नत से पता चलती हैं वो क्या है कि ये हराम है तो वो हराम है, बाकी फिर क्या है कि पाक है। वमा अल्लम तुम मिनल जवार ही मुकल्लबीना, और जिन शिकारी जानवरों को तुमने सधाया हो, जवारे इसका रूट है जीम राहा, जख्म को कहते हैं, और जारहतुन वाहिद है, जवाहरे इसकी जमा है। तो जैसे शिकारी जो जानवर होते थे वो क्या करते थे, जख्म लगाते थे और फिर शिकार को पकड़ते थे। तो मुकल्लबीन, काफ लाम बा इसका रूट है। काफ लाम बा हो कल्ब दो नुक्तों वाला तो उसके मानी दिल के होते हैं, कैफ लाम बा हो तो इसके मानी कुत्ते के होते हैं, और तकलीब के मानी होते हैं कि कुत्ते को शिकार की ट्रेनिंग देना। तकलीब, वैसे तो कुत्ते को शिकार की ट्रेनिंग देना, लेकिन हर वो जानवर जिसको शिकार के लिए सुधा लिया जाए तो उसको भी तकलीब कहा जाता है, यानी ट्रेनिंग याफ्ता जानवर, शिकारी जानवर को तुमने सुधा लिया है। तो अल्लमूनहु, तुम उसको सिखा लेते हो, मिम्मा अल्लमाकुमुल्लाहु, उस तालीम की बिना पर जो अल्लाह ने तुम्हें दी है। तो अब कहा जा रहा है कि जिन शिकारी जानवरों को तुमने सधाया है, जिनको अल्लाह के दिए हुए इल्म की बिना पर तुम शिकार की तालीम दिया करते हो, तो क्या करो, फाकुलूहु, पर तुम उसे खा लो। अब इसके लिए दो शर्तें बताई। नंबर एक, मिम्मा अमसकना अलैकुम, वो जिस जानवर को तुम्हारे लिए पकड़ कर रखे। अमसकना सीन काफ नून से है, सकना रुकना, और अमसकन वो रोक कर रखे। तो जैसे शिकारी जानवर को ट्रेनिंग दी हुई है, तो शिकारी जानवर का लाया हुआ शिकार जो है, इसके हलाल होने की दो शर्तें हैं। उसमें से पहली बात क्या है कि शिकारी जानवर ने शिकार खाया हुआ नहीं है, बल्कि उसको पकड़कर आपके लिए ले आए हैं। दूसरी शर्त, वस्कुरुस्मल्लाह, कि उस जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, वस्कुरुस्मल्लाही अलैहि, कि जब तुमने जानवर को छोड़ा था तो उसको बिस्मिल्लाह पढ़कर छोड़ा था, तो ये जानवर तुम पर हराम, ये जानवर तुम पर हलाल है, हराम नहीं है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो, यानी अल्लाह का कानून तोड़ना मत। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। तो आप देख लीजिए, क्योंकि अहले अरब जो थे ये बद्दू थे, और अक्सर ये सफर पर रहते थे, और शिकार पकड़ना और इसका जो है, इनकी जो जिंदगी थी, मुआशी जिंदगी, या इनका जो बिजनेस था, उसका इन्हसार शिकार पर था। तो इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो है वो इसकी तफसील बताई हुई है कि सुधाए हुए जानवरों के पकड़े हुए शिकार को खाया जा सकता है। उसकी दो बातें अहम है, दो शराइत, कि उस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, और वो जानवर जो है तुम्हारे लिए पकड़ कर शिकार को रखे, खुद ना खा ले, रोक ले। अमसकना अलैकुम, अमसकना के साथ अला की प्रेपोजिशन आई, जिसके मानी है रोकना, थामना। और अगर तुमने, जैसे अब शिकार बाज लोगों को बहुत पसंद होता है, तो बाज अवकात क्या होता है कि जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि तुम जो है वो अपनी तबीयत से मजबूर होकर जो है वो इन शराइत का ख्याल भी ना रखो और शिकार को खाना चाहो। तो कहा कि अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह को हिसाब लेते देर नहीं लगती। आयत नंबर 5 में हलाल और हराम के अहकाम से मुतल्लिक जो है वो नफ्स की तहारत का जिक्र है। अब आप देखें, शुरू में जानवरों का था ना, क्या हलाल है क्या हराम है, और अकीदे का भी जिक्र कर दिया कि जो गैर अल्लाह के नाम पर जिक्र किया जाएगा, या नुसुब पर यानी किसी मजार पर जिबा किया जाए, तो वो चीजें जायज नहीं है। अब बताया जा रहा है कि मजीद जो है वो हलाल और हराम चीजें क्या हैं, और इसमें जो है वो खास तौर पर अब बताया जा रहा है, जिसका ताल्लुक है खाने से और जिसका ताल्लुक है निकाह से, औरत से। फरमाया, अल्योमा अहिल्ला लकुम अत्तय्यिबात, आज तुम्हारे लिए सारी पाक चीजें हलाल कर दी गई। अब आप देख लें कि मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आज मुसलमानों तुम्हारे लिए सारी पाक चीजें हलाल कर दी गई, इसके माने क्या हैं? असल में इसके माने ये हैं कि मुसलमानों को अब ये बताया जा रहा है कि जो भी पाक चीजें ना आज तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई, क्योंकि अहले किताब के जो पाकी और तहारत के तरीके हैं उस पर अमल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज तुम्हें पाकी के तरीके बता दिए गए, और वो क्या है, अहिल्ला लकुम अत्तय्यिबात, कि आज तुम्हारे लिए सारी पाक चीजें हलाल कर दी गई। وَالطَّعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں کتاب دی گئی. اہل کتاب کا کھانا کیا ہے؟ حِلٌّ لَكُمْ یہ تمہارے لیے حلال ہے. وَالطَّعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اب اس سے بعض لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب جو کچھ کھاتے ہیں ہم بھی کھا سکتے ہیں, کیونکہ قرآن میں کہہ دیا گیا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ, اس کو آپ سرکل کر لیں کہ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئیں. اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی دراصل یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہا آج سے مراد, یعنی یہ حجت الوداع کا موقع ہے 10 ہجری کا یوم عرفہ کا دن جب کہا کہ دین مکمل کر دیا گیا, تو اس کے ساتھ ہی کہا کہ طیبات تمہارے لیے حلال کر دیے گئے. طیبات سے مراد صاف ستھری چیزیں ہیں, پاکیزہ, جو باسی سڑی گلی نہ ہو, اور نمبر دو جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. تو جتنی بھی صاف ستھری چیزیں ہیں ظاہری طور پر اور اس کے ساتھ جو ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے, وہ ساری مسلمانوں کے لیے کہا کہ حلال کر دی گئی. پھر اس کے ساتھ ہی اب آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ مزید آگے یہ کہا کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے اور تمہارا ان کے لیے. اچھا, اب اس میں جو ہے اگر اہل کتاب جو ہے وہ طیبات کی جو ہے وہ طیبات کا جو اصول ہے اس پر نہیں چلتے تو پھر ان کا کھانا نہیں کھایا جا سکتا, کیونکہ جیسے اہل کتاب ہیں وہ سور کھاتے ہیں, وہ شراب پیتے ہیں, یا ان کے دسترخوان پر ایسے جانور موجود ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا, یا وہ کسی اور کا نام لیتے ہیں, تو پھر ان کا کھانا نہیں کھا سکتے. کیونکہ پہلی شرط کیا ہے؟ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ, کہ پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے اگر وہ اس پاک چیزوں کی, جو پاک کی جو شرط ہے نا, اس کی وہ پابندی کرے. پھر فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ, اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں. من المومناتی, خواب و اہل ایمان کے گروہ میں سے ہوں, والموسناتو من اللذین اوتو الكتاب من قبلکم, یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. اب آپ دیکھیں کہ موسنات کا لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں کہ موسنات جو ہے وہ کسے کہتے ہیں, خاص واد نون سے یہ لفظ جو ہے وہ بنا ہے حسن, اور یہ قلعے کو کہتے ہیں, فورٹ کو کہتے ہیں, اور اس کے تین معنی ہیں, آزاد عورت کو بھی کہتے ہیں اور شادی شدہ عورت کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے, اور تیسرا ہے ایمان لانے والی عورتیں, ان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے والمحصناتو, اور محفوظ عورتیں, من المؤمناتی, ایمان لانے والوں میں سے. یعنی یہاں پر عورتوں کی دو شرائط ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہیں. والموسناتو, محفوظ سے مراد پاک دامن, یعنی زنا کرنے والی نہ ہو, پاک دامن عورتیں. من المومناتی, مومن عورتوں میں سے. والموسناتو, پھر کہا پاک دامن عورتیں, یعنی زانیہ نہیں ہونی چاہیے. من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, اہل کتاب میں سے, یعنی وہ عورتیں جن اہل کتاب کی وہ عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. اذا آتیتموہن اجورہن, جب تم دو ان کو مہر ان کا, محسنین, نکاح میں لیتے ہوئے. یہاں پہ محسنین کا لفظ نکاح کے لیے آیا ہے, حسن یعنی نکاح کا قلعہ. تو تم نے جو ہے جب ان کو مہر ادا کیا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پیسے دے کر تھوڑی دیر کے لیے زنا کرنا, بلکہ محسنین نکاح کے حصار میں ان کو لینا. غیر مسافہین, نہ کہ بدکاری, کھلی بدکاری کرنا. مسافہینہ کا لفظ پہلے پڑھ چکی ہیں, سین فا ہا, پانی یا خون کا بہانہ. عموماً اس کا استعمال منی کا پانی ناجائز طور پر بہانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جیسے ناجائز طور پر जब ताल्लुक कायम किया जाता है तो उस वक्त लोग औलाद नहीं चाहते ना, तो मानी क्या है, बदकारी करना, वला मुत्तखिजी अखदान, और ना पकड़ने वाले हों छुपी दोस्ती। मुत्तखिजी अखद से है हमजा खाजाल, अखद करना पकड़ना। ये मुत्तखिजी इसम फाइल है, पकड़ने वाले बनाने वाले, अखदान खा दाल नून और रूट है, मानी है ऐसी दोस्ती जो कि पोशीदा हो, तो पोशीदा दोस्ती पकड़ने वाले ना हो। अब आप देख लें कि यहाँ पे अहले किताब की औरतों से निकाह की जो इजाजत दी गई, अब लोग इतना ही याद रखते हैं कि अहले किताब की औरतों से निकाह की इजाजत है, उनका खाना जायज है। वो भूल जाते हैं कि सबसे पहले कहा अत्तय्यिबात, खाने के मामले में भी अलयौमा अहिल्ला लकुम अत्तय्यिबात, और जहां पे जो है वो निकाह करने की इजाजत दे दी गई, तो एक तरफ कहा कि वल मोहसनातु मिनल मोमिनात, के अहले ईमान की जो है वो पाक दामन औरतें, यानी जो अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली हैं, जिना करने वाली नहीं है, और दूसरी तरफ क्या कहा, वल मोहसनातु, और पाक दामन औरतें, किसकी, अहले किताब की वो औरतें जिन्होंने जिना नहीं किया हुआ। वल मोहसनातु मिनल्लज़ीना उतुल किताब, अहले किताब की वो औरतें जिन्होंने जिना नहीं किया हुआ। अब आप देखें कि आमतौर पे औरतें जो हैं उनके अंदर हया नहीं पाई जाती और उनका चाल चलन दुरुस्त नहीं होता, तो अहले किताब की औरतों से निकाह की इजाजत देने के बाद क्या फरमाया, नंबर एक वल मोहसनातु मिनल्लज़ीना उतुल किताबे मिन कब्लिकुम, कि वो पाक दामन होनी चाहिए। नंबर दो, जब तुम उन्हें मेहर दे दो, इजा आते तुमुहुन्ना उजूरा होना, मेहर अदा कर लो उनके। नंबर तीन, मोहसिनीना, के निकाह करो उनसे, मोहसिनीना निकाह, नंबर यानी कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और फिर जो है वो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, नहीं ये जायज नहीं है। और बाज लोग समझते हैं, बाज मुसलमान मर्द और लड़के ये समझते हैं कि अहले किताब की औरतों के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये जायज नहीं है। फिर नंबर चार है गैर मुसाफिहीना, अब ये नहीं है कि तुम जो है वो बदकारी करो, सफाहा मनी का पानी बहाना नजायज तौर पर, बदकारी के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है सफाहा का, तो गैर मुसाफिहीना बदकारी नहीं करनी। नंबर पांच वला मुत्तखिजी अखदान, चोरी छुपे आशनाइयां करना, जैसे वही जो है वो चोरी छुपे यारी करना दोस्ती करना, तो ये चीज भी जायज नहीं है। अब आप देख लें कैसी खुली खुली आयात हैं, और वही वाली बात है कि बस सिर्फ मीठा याद रहता है, जैसे वो एक मर्द को जो है वो जब चार औरतों से शादी की इजाजत है, तो चार से इजाजत तो याद रहती है, ये भूल जाता है कि मुझे अदल करना है। इसी तरह अहले किताब की औरतों से शादी की इजाजत तो याद रहती है, ये भूल जाता है कि आगे भी चार पांच शरायत हैं, कि वो पाक दामन होनी चाहिए, उनको मेहर देना है, मकसद निकाह करना है, और जो है वो बदकारी नहीं करनी, और चोरी छुपे जो है वो आशनाइयां और दोस्तियां नहीं करनी है। अच्छा, ये सारी इजाजत है, और ये नहीं कि ये इसको लाजिम करार दिया, इसकी रियायत है, इसकी गुंजाइश है, हाँ ऐसा किया जा सकता है, लेकिन पहले मोमिन औरतों से निकाह की बात है कि मोमिन औरतों से निकाह करो। अच्छा, ये कहकर ये जो अगला फिक्रा है ना आयत नंबर पांच का, इसको आप जरा सर्कल करें और हाईलाइट करें, आप लेती हैं आपके पास होता है हाईलाइटर वगैरह, उससे हाईलाइट किया करें। वमन यकफुर बिल ईमानी फकद हबित अमलहू, और जिस किसी ने ईमान की रविश पर चलने से इनकार किया, फकद हबित अमलहू, उसका सारा कारनामा जिंदगी जाया हो जाएगा, वह हुआ फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में जो है वो खसारा पाने वालों में होगा। वमन यकफुर, और जो कोई इनकार करेगा, बिल ईमानी ईमान का, अब इसका क्या मतलब है कि ईमान पर चलने से जो इनकार करेगा, कि अगर वो खाने पीने के मामले में हलाल हराम की तमीज नहीं करता, अगर वो खाने के मामले में तय्यबात का ख्याल नहीं रखता, खबीसात और तय्यबात का, निकाह के मामले में वो मोमिन औरतों को फोकियत नहीं देता, और जो है वो समझता है कि मुझे अहले किताब की औरत से निकाह की जो इजाजत है या रियायत है उससे मैं फायदा उठाना चाहता हूं, तो साथ ही अल्लाह ताला ने तंबीह की है कि याद रखना कि असल चीज ना ईमान है, और जिसका ईमान खतरे में पड़ गया अहले ईमान की औरतों से शादी करके, फकद हबित अमलहू, उसका सारा जिंदगी का कारनामा जाया हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। वहुवा फिल आखिरती मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में खसारा पाने वालों में से होगा। अब इजाजत से फायदा उठाते वक्त मुसलमान मर्दे इस निकाह की इजाजत से फायदा उठाते वक्त मुसलमान मर्द और लड़के जो हैं वो अहले किताब की औरतों के ईमान और इखलाक से होशियार रहें। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जो है वो भूरी आंखें, ब्राउन जो है वो आंखें या नीली आंखें, और उनकी उनकी सफेद रंगत या उनका हुसन या उनका इश्क जो है उसमें वो मुब्तिला हो जाएं और फिर अपना अकीदा अपने अमाल उनसे हाथ धो बैठे, अपने ईमान का सौदा कर बैठे, और फिर जो है एक अहले किताब की औरतों से निकाह करने की वजह से उनके घर के अंदर जो है वो कुफर आने लगे, हराम आने लगे, फिर औलाद जो है वो काफिर बन जाए। तो कहा कि ऐसा शख्स जो है उसकी जिंदगी भर की नेकियां सब जाया हो जाएंगी और आखिरत में भी वो शख्स जो है वो नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाएगा। यहाँ पे हा बा तो ये बहुत अहम है, और आपको पता ही है कि इसके मानी होते हैं कि ऊंट का चारा खाकर उसके पेट का फूल जाना। और आमतौर पे ऊंट जब चारा खाता है तो उसका मकसद ये होता है कि ऊंट जो है चारे से उसको ताकत मिले, और अगर उसका पेट फूल जाएगा तो उसका नुकसान क्या होगा कि ऊंट जो है वो फिर मर जाएगा। यानी पेट जब फूल जाता है चारा खाकर तो फिर लोग जानवर भी मर जाया करते हैं, इंसान भी मर जाया करते हैं। तो यहाँ कहा कि ये एक रियायत है, ये इसकी सिफारिश नहीं की, बल्कि कहा कि अगर अहले किताब की औरतों से निकाह के नतीजे में दीन का खतरा हो, ईमान का खतरा हो, तो निकाह तो जायज ही नहीं है फिर, और फिर वो दुनिया भी उसकी गई और उसकी आखिरत भी गई, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। और अब आप देख लीजिए कि हमारे जो मुसलमान मर्द हैं या लड़के हैं, बहुत से मगरिब की दुनिया में आला तालीम हासिल करने के लिए आए, और उसके बाद मुसलमान लड़कियां जो नेक हैं, पाक दामन हैं, वो बैठी हुई हैं, उनके बालों में सफेद चांदनी चांदी चमकने लगी, और वो कंवारी की कंवारी और बूढ़ी हो गई। और यहाँ पे जो है वो जो काफिर हैं या अहले किताब की औरतें हैं उनके इश्क में मुसलमान मर्द मुब्तिला हुए और ईमान का सौदा भी किया, इखलाक का सौदा भी किया, अल्लाह की हदों को भी तोड़ा, और घर के अंदर जो बच्चे पैदा हुए बाप फिर मस्जिद की तरफ ले जाना चाहता है और जो है वो माँ जो है वो गिरजे की तरफ ले जाना चाहती है। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी कि वर्जीनिया का एक आदमी जो डॉक्टर था उसने ऐसी किसी औरत से शादी की हुई थी, और फिर जो है दो बेटे हुए और वो अपने बेटों को मस्जिद की तरफ ले जाना चाहता था और बीवी जो थी वो इस गिरजे की तरफ, हर वक्त घर में लड़ाई रहती थी। उसने बच्चों को पहले गोली दोनों को मारी, फिर अपने आप को भी मारी और फिर वो मर गया। और इसी तरह पिछले दिनों एक बुजुर्ग और बूढ़ी औरत ने मुझे फोन भी किया और बहुत परेशान थी और कह रही थी कि मेरे बेटे ने एक ईसाई औरत से शादी की और जो बच्चे हुए हैं अब जो है वो उनको ईसाई बना रही है, और वो औरत रो रही थी कि आप मेरी मदद करें कि कैसे उनको जो है वो ईसाई बनाने से बचाया जा सकता है। फिर अभी पिछले दिनों एक औरत यहाँ पे भी मुझे मिली और कह रही थी कि मुझे मेरे बेटे ने जो है वो शादी की है इसी तरह यहूदी या ईसाई से, और जो है वो उसकी वजह से मेरे बेटे का ईमान और इखलाक सब चीजें जो है वो बिगड़ गई हैं, मुतासिर हो गई हैं, आप मुझे कोई दुआ बताएं। तो वक्तन फक्तन लोग जब इन मराहिल से गुजरते हैं वो परेशान होते हैं, वो रोते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दवा जो है वो ये है कि कुरान को तर्जमा तफसीर से जो है वो पढ़ा जाए, उसको खोला जाए, उसको समझा जाए, और जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर कुछ चीजों की रियायत देते हैं या कुछ चीजों की गुंजाइश देते हैं तो उसके साथ ही कुछ शराइत भी होती हैं। हमारा मुसलमानों का मसला ये है कि वो पूरी जो अपनी मर्जी की चीज होती है ना, पूरी सूरतों आयात में से निकाल कर बस उस पर अमल कर लेते हैं, ना उससे पहले की बातों को समझते हैं ना उसके बाद की बातों को समझते हैं, और नतीजतन जो है वो मुआशरे के अंदर, घरों के अंदर, ईमान और इखलाक के अंदर बिगाड़ जो है वो पैदा होता चला जाता है। और इस सिलसिले में जो है फिर बहुत ज्यादा एहतियात करने की जो है ना जरूरत है। तो आपने आज के सबक में ये भी पढ़ा कि नेकी और तकवा के कामों में तामुन करो। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दालु अलल खैरी कफ़ाइल ही, जो शख्स किसी को नेकी का रास्ता बता दे तो उसका सवाब ऐसे ही है जैसे इस नेकी को उसने खुद किया हो। तो इससे ये बात पता चलती है कि खुद भी नेक बनना है और दूसरों को नेक बनाने के लिए जो है वो हमें दावत देनी है कि दूसरे लोग भी नेक जो है वो बन जाएं। और इस बात की जरूरत है कि हम जो हैं खुद कुरान पढ़ें और फोकस इल्म हासिल करें, सतही नहीं कि कभी कभार जो कुरान पढ़ लेते हैं, बल्कि जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ और पूरे शऊर के साथ। और जो आप माशाल्लाह ये पढ़ रही हैं, जैसे आपने सूरत निसा के आखिर में भी आपने ये आयात जो थी वो पढ़ी थी कि इल्म दो तरह के होते हैं, आयत नंबर 162 सूरत निसा, एक होता है शैलो नॉलेज, दूसरा होता है फोकस नॉलेज। एक सतही इल्म होता है और एक होता है गहरा इल्म, जिसमें दीन के कवायद और कुरान का टेक्स्ट, कुरान के टेक्स्ट पर होल्ड हो, असल इबारत पढ़ सकते हो, तिलावत कर सकते हो, दीन की बुनियादों का पता हो, ये भी पता हो कि क्या मतलब है इस बात का। तो मेरी प्यारी बहनों, आप खुद भी इसको पढ़ना शुरू करें, और साथ ही जैसे अभी माशाल्लाह दारुल ईमान की 18 मंथ क्लास भी जो है वो शुरू हो रही है, 7 जुलाई को पहली क्लास है इंशाल्लाह इंग्लिश में, 18 महीने के अंदर जो है वो यूथ पूरा कुरान जो है वो पढ़ सकती है। आपके बच्चे हाई स्कूल में हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, बड़े हो चुके हैं, तो आप उनसे जरूर ये बात कहें कि जो है वो आपको कुरान तर्जमा तफसीर से पढ़ना, एक दफा जब वो गुजर जाएंगे ना तो उनको समझ आ जाएगी कि दीन की बाउंड्रीज क्या हैं, क्या लिमिटेशन है मेरी, कितनी लिमिट्स है मेरी, मुझे क्या करना है और क्या मुझे नहीं करना। और फिर इससे जो है वो ईमान भी महफूज रहेगा और इस्लाम जो है वो भी महफूज हो जाएगा। अभी चंद दिन पहले ये वाकया सामने आया कि एक लड़की और लड़के ने, मुसलमानों की औलाद थी, मतलब दोनों मुसलमान थे, लड़की लड़का, और उन्होंने लव मैरिज की, और शादी के 2 वीक बाद ही लड़की ने कहा कि मुझे तलाक चाहिए। लड़की से पूछा गया कि तुम क्यों तलाक चाहती हो, तुमने तो अपनी पसंद से शादी की है। कहने लगी कि मुझे एक एज ए फ्रेंड तो वो पसंद है, लेकिन एज ए हस्बैंड मुझे वो पसंद नहीं है, यानी एज ए हस्बैंड जो है वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ जो है वो शादी जो मैंने की तो मैं उसके साथ अपनी शादी को बरकरार नहीं रखना चाहती। तो असल में ये जो नावल हैं, ये जो मूवीज हैं, या ये जो कहानियां हैं, ये इंटरनेट है, इसने ये जो शादी, ये जो मैरिज है ना, इसको जैसे एक बिजनेस की तरह, और इसकी सही हकीकत जो है ना, उसकी रूह जो है वो खो दी है। और बच्चे जो हैं, जैसे वो एक शीश महल में नहीं रहते, जब ये आप भी कभी पढ़ा करती थी, एक परी है और एक शहजादा है और एक शहजादी है और जा रहे हैं और फिर ये है वो है, तो जैसे कोई जैसे शीश महल में रहता है, तसव्वुरात की दुनिया में, और रियलिटी से जो है ना वो बहुत दूर होता है। और हमारे बच्चे बच्चियां जब रियलिटी में रहते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ से वो दूर होते हैं, तो नतीजा तन आप देखें कि अब जो है वो तलाक का रेशो कितनी तेजी से जो है वो बढ़ रहा है। तो इसलिए में इसकी असल वजह क्या है कि शादी की जो जिम्मेदारी है, वैसियत एक शोहर के और बीवी के क्या जिम्मेदारी बनती है, आपस में बेटी को भी और बेटे को भी, दोनों को सिखाने की जरूरत है। हम जहेज की फिक्र भी करते हैं, बरी की भी करते हैं, खूब लेते देते हैं, लेकिन जैसे अच्छे तरीके से एजुकेट करना चाहिए, उस सिलसिले में जो है हम कमी कर देते हैं, उस सिलसिले में हम कमी कर देते हैं, और जिसके नतीजे में आज जो है वो इस्लाम में बिगाड़ पैदा हो रहा है, मुसलमानों के अखलाक और किरदार में, उनके फैमिली सिस्टम में, हर चीज में जो है वो बिगाड़ पैदा हो रहा है। तो इस सिलसिले में फिर क्या करना है कि तालीम को आम करना है। और आज के सबक को अगर आप देखें तो इसमें हमारे सामने दो बातें बहुत नुमाया तौर पर सामने आती हैं, जिसमें पहली चीज ये है कि मोमिन की जिंदगी एक पाबंद जिंदगी है, वो दुनिया में आजाद है कि जो चाहे करे, लेकिन इसके बावजूद उसे अल्लाह को अपना हाकिम मानना है और अपने आप को अल्लाह के कानून का पाबंद बनाना है। तो औफू बिल उकूद के मानी यही है कि अल्लाह की पाबंदी की रस्सी उससे अपने आप को बांधना है, मामला अल्लाह के हुकूक का हो या बंदों के हुकूक का हो, उसमें अल्लाह के बताए हुए कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, उन्हीं चीजों को अपनी खुराक बनाना है, उन्हीं चीजों को अपनी खुराक बनाना है जो अल्लाह ने हलाल की हैं, और जिनको अल्लाह ने हराम किया है उनको जो है वो छोड़ देना है। और एहराम के मौके पर हलाल चीजें हराम हो जाती है ना, तो ये एक ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग देने का मकसद ये है कि आम जिंदगी में जब अल्लाह ताला हराम चीजों से रोके तो उस वक्त जो है हम अल्लाह के खौफ से फिर हराम चीजों से भी रुक जाएं, अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए हमें उन अहकामात की हिकमत समझ में आए या ना आए, लेकिन अल्लाह से डरते हुए अल्लाह के अहकामात जो है उन पर अमल करना है। तो आज के सबक में आप देख रही हैं कि बार बार कहा जा रहा है कि ए ईमान लाने वालों, दूसरी चीज वत्तकुल्लाह, तीसरी चीज फइन्नल्लाह गफूर रहीम, और चौथी चीज कि जब दुनिया में रहें तो दुनिया ही की फिक्र ना करें, बल्कि ये भी सोचें कि मेरा ईमान जो है मैंने उसका सौदा तो नहीं कर लिया, और उसके साथ ही कि आखिरत में मेरा शुमार जो है वो किन लोगों में होगा, वह हुआ फिल आखिरती मिनल खासिरीन, कि फिर वो आखिरत में खसारा पाने वालों में से हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने वाला बनाए, हम सबके गुनाहों को माफ कर दे, हम सबसे राजी हो जाए, और ये कुरान मजीद जो हम सब पढ़ रहे हैं हम सबको इस पर जो है वो अमल करने वाला बनाए। तो इसके साथ ही जो है वो मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ कि याद तो आज भी है नारे तकबीर की गूंज, ऐसी यादों का मगर जिक्र ही क्या कुछ भी नहीं, चंद अल्फाज के मोती हैं मेरे दामन में, है मगर तेरी मोहब्बत का तकाजा कुछ और, सिर्फ ईमान के नारे हैं मेरे होंठों पर मगर तेरी अतात का तकाजा कुछ और। मैं किसी और को इल्जाम नहीं दे सकती, अपनी तारीख को खुद कत्ल किया है मैंने, हुस्ने किरदार की पूंजी तो घटी रोज बरोज, सिर्फ होंठों से तेरा नाम लिया है मैंने। तो अल्लाह करे कि अपने अमल से जो है हम अल्लाह के अहकामात को जिंदा करें, हम वफा करें, और हम बेहतरीन मुसलमानों में शामिल हों। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह।